इस्लाम की चार बुनियादें, इसमें से हम इबादत के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे पेज 68 से। इत्तबाए रसूल की अहमियत, इखलास की हकीकत जानने के बाद अब रसूल की तबा क्यों? इसलिए कि अमल सवाले की दो ही शर्तें हैं, पीछे हमने बात की थी। नंबर एक, इखलास हो लिल्लाहियत, अल्लाह के लिए किसी काम का करना, और दूसरी उसकी शर्त क्या होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। कोई भी नेकी का काम जब आप और मैं करें तो उस वक्त हमारे जहन में ये ख्याल आना चाहिए कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया था, क्या आपके काम के करने और मेरे काम के करने में कोई रब्त है। जब आप इस सोच के साथ कोई काम करते हैं तो आप कह सकते हैं कि अपने उस काम को कबूल करवाने के लिए आपने अपनी सी कोशिश कर ली, अब अल्लाह ताला उसको आपके लिए आसान कर देगा। तो हम देखेंगे कि हमारे दीन में इत्तबाए रसूल क्या है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दिलों में इसकी क्या तलब थी, क्या तड़प थी, और किस तरह से वो इन सारी चीज़ों को लेते थे। थोड़ा सा हम बुक में से पढ़ के फिर इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। तो इत्तबाए रसूल की अहमियत, इत्तबा का लफ्ज़ तबिया से है। तबा कहते हैं पाँव पे पाँव रखना, ताबा आइन इसका रूट है। उर्दू में भी आप बोलते हैं इत्तबाए सुन्नत, ताबे, मतबू। गाय का बच्चा जो पैदा होता है उठते ही अपनी माँ के कदमों के पीछे चलना शुरू होता है, तो इसी वजह से उस बच्चे को तबिया कहते हैं, यानी माँ के कदमों पे पाँव रख के चलने वाला बच्चा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझेंगे तो फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ों में आएंगे। दो लफ्ज़ आपने सुने हैं, एक है अतीउल्लाह और अतीउर रसूल, और यानी ताते रसूल, और एक इत्तबाए रसूल। इताअत क्या है कि नबी सल्लम ने कुछ कहा के करो और आप उसको दिल की खुशी से करते हैं, क्योंकि अतीयू में लफ्ज़ तौन है, तोए वाव आइन, तौन कहते हैं खुशी से करना। किसी ने आपको कुछ करने का हुक्म दिया और आप उसको दिल की खुशी से करें, ये होगी इताअत। जैसे आप अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा पानी पिलाना, तो कहता है जी अम्मी, बड़ी मोहब्बत से उठा, ग्लास लिया, सलीके से लाकर आपके पास रखा, आप कह सकते हैं कि इसने मेरी इताअत की। इसमें कुछ कहना पड़ता है, लेकिन एक और दर्जा इत्तबा का, कहा भी नहीं, किसी को वो काम करते देखकर आप भी वो काम करने लग जाएं। जैसे अमूमन हमारे बच्चे वही करने लगते हैं जो हम कर रहे होते हैं, माँ नमाज पढ़ेगी आप देखेंगे बच्चा भी आके जाए नमाज पे खड़ा हो जाएगा, इसी तरह से माँ बाहर जाएगी बच्चा भी जाएगा, तो इसको इत्तबा कहते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इताते रसूल का मुकाम ज़्यादा बड़ा है या इत्तबाए रसूल का? इत्तबाए रसूल का। एतात क्या थी, कुछ कहा और आपने खुशी से किया, लेकिन इत्तबा तो कुछ और है। आज इसमें हम कुछ वाक़यात पढ़ेंगे सहाबा की दीवानगी के, तो इससे आपको इसका अंदाज़ा भी होगा। अल्लाह ताला हमारी मंजिल है और अल्लाह ताला तक पहुँचने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये रास्ता तन्हा तय नहीं हो पाता, इसलिए कि रास्ता बहुत तवील और पेचीदा है, यानी मुश्किल है, और इसमें बहुत मुश्किलात हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी इसकी खूबसूरत मिसाल देते हैं, कहते हैं कि बूद मूरे हो से दाश्त के दरे काबा रसद, दस्त बर पाए कबूतर जद व नागाह रसीद। कहते हैं कि एक चूंटी को ख्वाहिश हुई कि अल्लाह के घर यानी काबा में पहुँच जाए। अब इमेजिन करें, चूंटी ने पता नहीं कहाँ बैठ के ख्वाहिश की होगी, ये मुमकिन नहीं था क्योंकि रास्ता बहुत तवील और ख़तरनाक था। कैसे चलती, चलना शुरू होती शायद सारी ज़िंदगी चलती रहती तो पाकिस्तान से भी सऊदीया ना पहुंचती। तो चुंटी ने क्या किया, चुंटी को हरम की तरफ जाने वाला एक कबूतर मिल गया। चुंटी ने इसके पाँव को मजबूती से पकड़ लिया। जब कबूतर उड़कर हरम पहुंचा तो चुंटी भी पहुंच गई। ये है इत्तबा, उसके पाँव पर लटकी ना, कि मैं और आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी की पसंद और नापसंद को, अपने सारे प्रोग्रामों को अल्लाह के नबी सल्लम की ज़ात में फना कर दें। इस मिसाल में आप सोचिए, हम खुद अल्लाह तक पहुंच सकते थे? नहीं, रसूल के कदमों पे कदम रख ले, नक्शे पा। हम कहते हैं ना, फुलां के नक्शे कदम पे चलो, तो इत्तबा के नीचे आप लफ्जी तर्जमा उर्दू का लिख लें, नक्शे कदम, पाँव पे पाँव रखना। आपने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अहब्ब इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि व नासि अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इसे अपने वालिद, औलाद और तमाम इंसानों के मुकाबले में महबूब तर न हो जाए। सच, इस क्राइटीरियन पर ला के देखें अपने आप को, माँ से भी, बच्चों से भी, सारे लोगों से। अच्छा, ये पता कैसे चलता? आम हालात में नहीं पता चलता कि हमें अपने वालदैन या अपने बच्चे या दोस्त, ख़ानदान, वो ज़्यादा प्यारे हैं कि नबी सल्लम ज़्यादा प्यारे हैं। कोई भी आपसे पूछे, आप कहेंगे जी हमें नबी सल्लम से सबसे ज़्यादा प्यार है। हम बिला सोचे समझे यही कहेंगे ना। लेकिन आप गौर करके देखें, पता कब चलता है? जब तकाबुल है। एक तरफ रसूल का हुक्म है, दूसरी तरफ औलाद की कोई और ही ख्वाहिश है। एक तरफ रसूल का हुक्म है, एक तरफ वालदैन के तकाजे कुछ और हैं, ख़ानदान के कुछ और हैं। तो जब दो मोहब्बतों में टकराव होता है ना, फिर आप किसको चूज़ करते हैं? मेरा ख्याल है इस मेयार पे तो आज आटे में नमक के बराबर है। हम मजबूर हो जाते हैं औलादों के हाथों, हम मजबूर हो जाते हैं बच्चों, माँ बाप, रिश्तेदार, बिरादरियों के हाथों। और मज़े की बात देखिए कि हम इसको गुनाह नहीं समझते, बल्कि क्या कहते हैं, रिश्तेदारियां भी तो निभानी है ना, सिला रहमी तो करनी है। फिर हम दूसरों को सिखाते हैं उस वक़्त दीन। तो अपनी ज़िंदगी में ये ग्रज पैदा करें, गुस्सा पैदा करें, बल्कि और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने अपने अल्लाह को नाराज़ करके अपने किसी रिश्तेदार को खुश नहीं करना, जाओ तुम कर लो अपने बच्चों की शादियाँ, मैं दुआ दे दूँगी लेकिन मैं आऊँगी नहीं, आप करें अपनी रसूमात, मैं बिल्कुल उसमें शामिल नहीं होंगी। मुझे कोई खुशी नहीं है ऐसे रिश्ते की कि जिसमें आप अल्लाह को नाराज़ करें। करके देखिए, मैं कहती हूँ बेबाक किस्म का एक बंदा पूरे ख़ानदान को सीधा कर लेता है। बाद में सिर्फ एक इंसान के आने की वजह से पूरी शादी का रुख लोग बदलते हैं, चूँकि उन्होंने आना है और उन्होंने आना नहीं, अगर ये किया और उनको बुलाना लाजमी है, चलो करो फिर। मैं कहती हूँ अगर माँ बाप खुद खड़े हो जाए ना इस बात पर, बच्चों की शादियों के मौके पर, कि जाओ फिर खुद कर लो, हम तो नहीं जाएंगे, तो बच्चे भी सीधे हो जाएँ। ये हमने खुद ही सर पे चढ़ाया होता है गलत कामों पे। खड़े हो जाए, उधर खड़े हो जाए, चार कदम पीछे खड़े हो जाओ, मेरे से बात ना करना, मैं सुनूंगी भी नहीं। आप देखिए हम क्यों इतने कमज़ोर होते हैं, ईमान का नक्स है ये, कोई मामला फहमी नहीं है, ये कोई आजजी नहीं है, ये कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, ये मान लीजिए इस बात का पोल है कि आप में जुरत ही नहीं है कि आप अल्लाह की बात को और उसके रसूल की बात को किसी इंसान की बात से ऊपर रख सकें। फिर इसी तरह एक और हदीस जो बहुत ही बड़ा क्राइटेरियन है, फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु हवाहु तबअल लिमा जीतु बिही। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता। पहले तब सोचिए, साहिब ईमान नहीं हो सकते, यानी इत्तबाए रसूल का ताल्लुक ईमान से। और आप नोट कर रहे हैं ना, हर चीज की डोरी ईमान से जुड़ी हुई है। कब तक नहीं हो सकते, अब फिक्र है तो पूछते हैं, जब तक इसकी ख्वाहिशात नफ्स इस तालीम के ताबे ना हो जाएं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। सोचिए ज़रा, हमारी ख्वाहिशात नफ्स उस तालीम के ताबे जो रसूलुल्लाह लेकर आए, क्या आज हमारी ख्वाहिशें शरीयत के अंदर हैं? हमें वो सब अच्छा लगता है जो शरीयत ने कहा करो, और जिससे शरीयत ने रोका कि हमें भी बुरा लगता है। देखिए फ़र्क समझें, एक है रुकना, रुक तो आप जाएंगे मन मार के, दिल बड़ा चाह रहा है, हाय लोग कितना मज़ा कर रहे हैं, मैं घर बैठ गई है। ये इस हदीस का क्राइटेरियन नहीं है। क्राइटेरियन क्या है कि आप गलत काम की ख्वाहिश ही दिल से निकाल दें। फर्क समझ आया आपको? ख्वाहिश को ताबे करना क्या होता है कि आपकी च्वाइस नबी सल्लम की च्वाइस से मिल जाए। देखिए एक होता है कॉम्प्रोमाइज और एक होता है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस क्या होता है कि आप गलत काम या जो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपको फीलिंग्स आती हैं कि मैं कुर्बान नहीं कर रही हूँ, मैं कुर्बान हो रही हूँ, मैं अपने आप को इधर उधर कर रही हूँ। और दूसरी सूरत क्या होती है कि आप कहते हैं कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, यानी जो उनको पसंद था फिर मैं ऐसा ऐसा वैसी हो गई। सुन्नत के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, दुनिया की किसी चीज़ पर जलें, कूड़ें, घुटें, हाय, मैं ऐसी बदबخت हूँ कि मैं अल्लाह के नबी के तरीके पे नहीं रह रही। आप देखिए ना, अगर आज मैं और आप अपनी ज़िंदगी गुजारने के लाइफस्टाइल को देखें, सिर्फ एक दिन 24 आवर्स आप अपने घर को सुन्नत की ऐनक से देख लें, ग्लासेस लगाइए सीरत के नाम के और उसकी रोशनी में देखिए आप किधर पहुँचे हुए, तो आपको लग पता जाएगा कि हमारे घरों के नक्शे कैसे हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ ये होम स्वीट होम नहीं है। और ये जो हमारी जिंदगियों से खैर निकल गई है ना, उसकी वजह भी यही है। सच कह रही हूँ, आज सुन्नतें आपकी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं, हम इस दुनिया को भी इंजॉय करें। ये जो गले की फांस बन गई है ना ज़िंदगी, रिश्तों से मोहब्बत चली गई, एतबार चला गया और न जाने क्या कुछ, इसकी वजह यह कि हमारी ज़िंदगियाँ गुजारने के तरीके बदल गए। आप देखिए, स्केल्टन होता है ना, ये बिल्डिंग बनी होगी तो इसका पहले ढांचा बना होगा ना, ढांचा निकाल दें तो पीछे ये बिल्डिंग क्या है, मलबे का ढेर, ईंटें, दीवारें, शीट रॉक गिर के एक ढेरी बन जाएगी। सीरत और सुन्नत क्या है, ढांचा। इस ढांचे को इस्लाम के अंदर से आप निकाल दें तो मेस्ड अप है, फिर मलबा है। आज लोगों को समझ ही नहीं आता कि अल्लाह के नबी आए क्यों थे। किसी ने पूछा कि बेबी शावर में जाएं, नई रस्म आई है। अब मुझे किसी ने नॉर्वे में सवाल किया कि अब एक नई तकरीब शुरू हो गई है बेबी शावर की, मुझे किसी ने बुलाया तो मैं जाऊं, तो मैंने उनको हंस के यही कहा कि बाय द वे ये अब नॉर्वे में नहीं है, अमेरिका ने अब छोड़ दी है, पुरानी हो गई है वहां, उधर के उतरे हुए कपड़े इधर आते हैं। उनको कम पता था, मैंने उनको उससे ज्यादा बता दिया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और आप देखिए आज मुसलमान इस पे आगे हैं, तो नहीं नहीं हम गाने नहीं गाएंगे, एक बच्चा भी दुनिया में आए कोई नहीं, आप उसके गिफ्ट्स ले रहे हैं, आप उसके गाने गा रहे हैं, ये मर्द है, ये बच्चा है, लड़का होगा कि लड़की होगी, और बच्चा पेट में है अभी। बेहयाई की बात देखिए कि जब बेबी शावर की रस्म होगी तो खानदान के एक एक बंदे को पता लग जाएगा ना बच्चा आने वाला, अब ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं लगती। कैसे हम कदम कदम रसूल के तरीकों से निकल गए। अगर अल्लाह के नबी ने हसन और हसैन के मौके पर बीबी फातिमा का मनाया था अगर बेबी शावर, तो मुझे आपको भी हक है। फिर लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, दीन का इससे क्या तल्लक है, तो खुश होने की बातें हैं, तो फिर आप बेबी शावर ही क्यों करते हैं, आप कोई नई चीज निकालें, गोरों की उतारी हुई चीजें आप क्यों करते हैं। इंडिया में जाएं तो गोद भराई कह लें, अमेरिका में जाएं तो आप उसको बेबी शावर कह दें। और इसमें भी इसी को बात है, जब मैं अमेरिका में थी उस टाइम में, मेरा ख्याल है कि अक्सर ही इस पे दर्स होते थे क्योंकि लोग बुलाते थे। नेक लोग फिर बेबी शावर वैसा करने लग गए हैं जैसे अब नेक लोग मेहंदियां और उबटन करते हैं, के साथ एक दर्स भी रख लेते हैं, कुरान खानी में साथ आपको दर्स रख दिया, मिलाद में आपका दर्स रख दिया। तो मैंने बेशुमार दर्स दिए हुए हैं बेबी शावर्स के मौके पर, सारे घर में गुब्बारे हैं, कहीं ब्लू हैं, पिंक है, सबको पता लग जाता है लड़का आना है लड़की आनी है। और वो जिन गोरों ने शुरू किया था उसकी भी कहानी आप सुन लें कि वो तो गरीब मदद करने के लिए करते थे, कि इतनी भूख प्यास थी कि बच्चे की डिलीवरी तक के पैसे नहीं होते थे, तो दोस्त मिलके अहबाब किसी के पास कोई चीज़ रखी है अपनी है पहली, वो उसको दे देते थे कि चलो अब इस मौके पे तुम्हारे काम आ जाएगा, हमारे बच्चे बड़े हो गए, यहाँ से ये चीज़ शुरू हुई थी। आज आप देखिए उसके पूरे पूरे घर सजते हैं, उनके पूरे पूरे बैनर बनते हैं। तो फारग लोगों ने कुछ तो करना है, असल मसला फिर वही है, जब आपके पास फरागत होती है ना तो आप ऐसे काम करते हैं। और नेकियों के मौके पूछे तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि लोग नेकी के मामले में कितने ज़्यादा केयरलेस एटीट्यूड का इजहार करते हैं। हमारे हाथ में नेकी होती है वल्लाही, इधर बिल्कुल आपकी इस हथेली में नेकी डल सकती थी कल, एक आपने नहीं ली, किसी और ने ले ली, किसी और का सदका बन गई वो नेकी, उसका नसीब है। वो एक नेकी उसके लिए देखिए 10 नेकियों का जरिया बनेगी। आपके हाथ में नेकी होती है, आप केयर नहीं करते, आप कर सकते हैं वो काम, सिर्फ सुस्त होते हैं, सिर्फ रिस्क नहीं लेना चाहते। तो याद रखिए नसीब के साथ नेकियां होती हैं और दुआएं भी नेकियां करने वालों को मिलती हैं। लोग कहते हैं मैं दुआओं में याद रखें, मैं कहती हूं आप दुआएं ले लें, दुआ तो दिल से निकलती है। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला इस तरह के असबाब बना देते हैं कि आप वही बात दोबारा कि एक नेकी के लिए निकलते हैं 6 नेकियां करके आते हैं घर से जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह को आपकी अदा बड़ी पसंद आती है, हालात बड़े मुश्किल थे, आपने उसमें वो नेकी कर ली। हम अपनी जान बचा के छुप जाते हैं उस वक्त कि नहीं इस वक्त अल्लाह नहीं सॉरी, हम अपनी मर्जी के वक्त अपनी मर्जी के हालात में नेकी करेंगे क्योंकि इससे अब हम इस वक्त ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने मुझे आपको जिस चीज़ की दावत दी है ना, वो क्या है, यकूनु हवाहु तबल लिमा जीतु बिही, इसको हाईलाइट कर लें। मेरा आपका गोल क्या है आपकी मेरी चॉइस, पसंद नापसंद मोहम्मद सल्लम से मिल जाए। बात वाज है, सवाब समझ के नहीं करनी, सुन्नत फर्ज समझ के नहीं करनी, नेकी समझ के नहीं करनी, स्टाइल बन जाए। जैसे वो कहते हैं ना, फॉलो द सुन्ना बिकॉज इट्स ब्रांडेड फ्रॉम अल्लाह सुभान तआला। सुन्नत को फॉलो करो क्योंकि इसका बनाने वाला अल्लाह है। दाढ़ी फर्ज समझ के नहीं रखनी, सवाब समझ के नहीं रखनी। यकूनु हवा हो तवाली माजी, तो भी इसके मुताबिक रखनी कि मेरा दिल कर रहा मेरी दाढ़ी हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी की दाढ़ी थी। अल्लाह के नबी आज के दौर में होते तो कैसे होते? अमेरिका, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जिस जिस मर्जी नॉन मुस्लिम मुल्क का नाम ले ले, अगर बिलफर्ज नबी सल्लम वहां जाके रह रहे होते, किस हाल हुलिये में बाहर आते? तो जो उनका हुलिया था, मुझे भी वही चाहिए, मेरा भी वही मुकाम है। हम कहते नहीं, ये तो फिर पढ़े लिखे होने के खिलाफ बात हो गई कि आप किस हाल हुलिये में फिर रहे हैं। तो बस मोहब्बत करें, इत्तबाए सुन्नत होगी तो बात होगी। अब देखते हैं कि हकीकत क्या है सुन्नत की। फरमाए, लकत कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ाते गिरामी में हसीन तरीन नमूना है, इसको अपना लो। देखिए, जब तक हम सुन्नत को हसीन तरीन नहीं समझेंगे ना, बात नहीं बनेगी। आप देखिए, कोई सिंगर दाढ़ी रख लेगा तो सारे ही जो फैन है वो भी रख लेंगे। अगर कोई गुलूकारा निकाब लेके आ जाएगी चेहरे पे तो सारे ही ले लेंगे, फिर तो फैशन बन जाएगा। तो आप इसको नबी की मोहब्बत में करेंगे तो आपके लिए अजर है। हकीकत इत्तबा क्या है? जब हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की बात करते हैं तो आमतौर पर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद आदात मुबारका को पढ़ लेते हैं और वहीं तक अपने आप को महदूद कर लेते हैं। मसलन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ से खाते थे तो हम भी दाएं हाथ से खाने लगते हैं, बहुत अच्छा। लिबास और मामलात में अल्लाह के नबी का इत्तबा बहुत मुबारक काम है। हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी फरमाते हैं कि नमाज में शहादत की उंगली उठाना हज़ार हा नवाफिल से बेहतर है, क्योंकि ये एक सुन्नत का इत्तबा है। हम क्यों उंगली उठाते हैं तशहुद में? कि अल्लाह के नबी उठाते थे। तो वो कहते हैं कि ये एक उंगली उठाना हज़ार नफिल पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नबी के तरीके पर उठा रहे हैं। आपकी आदत मुबारका को अपनाते चले जाना इत्तबा तो है, लेकिन ये जुज़वी इत्तबा है। जुज़वी मीन पार्शल, थोड़ी अधूरी। असल इत्तबा ये है, इसको हाईलाइट करें, जिससे आज पूरी उम्मती डिट्रैक हुई हुई है इल्ला माशाल्लाह। और वो क्या कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो मिशन था, इसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लें, वही हमारी जिंदगी का मकसद ठहरे। क्या मिशन था आपकी जिंदगी का? हिया कलिमतुल्लाहिल उलिया, अल्लाह का कलमा बुलंद हो। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक्क लियुज़हिरहु लिद्दीन कुल्लिही। आपकी जिंदगी का ये मकसद था कि अल्लाह के दीन को पूरे अदियान पर गालब कर दिया जाए, लोगों को इस्लाम अच्छा लगे, लोगों को इस्लाम का खूबसूरत पहलू दिखे। और क्या सुन्नत थी आपकी? ये अगला जुमला भी हाईलाइट करें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेफिक्र इंसान नहीं थे, यह सुन्नत है। आपकी तबीयत में फिक्र पड़ जाए, गम पड़ जाए, आप गम खो रहे थे, फला अल्लाह का बाख़ नफ्स का अला आसारी है, आप तो अपने आप को हलाक कर देंगे इस बात पे कि ये ईमान क्यों नहीं ला रहे। ये सुन्नतें हैं। नबूवत के बाद जिंदगी भर किसी ने आपको कह कहा लगाते और मुंह भर कर हंसते हुए नहीं देखा। आप किसी बात पर खुश होते तो हल्का सा मुस्कुरा देते। सोचिए, हमारे कह कहे कितनी दूर हैं, हंसते बोलते हर वक्त हंसना चाहते हैं। आप क्यों कहा करते थे कि लोगों, जो बातें मुझे पता है ना आखिरत की, तुम्हें पता चल जाए तो तुम मुस्कुराना छोड़ दो, हंसना छोड़ दो, तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दो, तुम उनको कब्रिस्तानों में डालकर आ जाओ, तुम बिस्तरों पे लज्जत लेना छोड़ दो अगर तुम्हें पता चल जाए कि आगे के मरहले के। कभी आप किसी मनचले को बड़ी गाड़ी छन छन चलाती घुमाती देखते हैं, थोड़ी दूर जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है, आप जाते हैं तो देखते हैं उसकी लाश पड़ी हुई है, तो आप कहते हैं अगर दो चार मिनट पहले इसको पता होता कि मेरी जान जाने वाली है तो ये गुलछड़े उड़ाता, लेकिन उसको नहीं पता था तो एंजॉय कर रहा था। इसी तरह अचंभे से बहुत सारे लोग बेफिक्री जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि हमें पता नहीं आगे के मरहले क्या हैं। आप किसी बात पर खुश होते तो हल्का सा मुस्कुरा देते, एक ऐसा इंसान के जिस पर कोई गम तारी हो, और इस गम का कुरान मजीद में बार बार जिक्र आया है। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप तो वक्त से पहले बूढ़े हो गए। फरमाए, शैबतनी हूदन व अखवातुहा, मुझे तो सूरत हूद और उसकी बहनों ने, यानी उस जैसी बाकी सूरतें, सूरह इंशिकाक, सूरह इन्फितार और 30वें पारे की और कुछ सूरतों के अपने नाम लिए, फरमाया मुझे तो इन्होंने बूढ़ा कर दिया। कभी गौर करें कि आखिर सूरत हूद और इस जैसी सूरतों में क्या लिखा हुआ है, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। और जिन्होंने मेरे साथ सूरह हूद पढ़ी है, मैंने वो आयत नोट कराई थी। मुफस्सरीन कहते हैं ये आयत है जिस पे अल्लाह के नबी गम करते थे। एक तो उसमें पिछली कौमों पे अजाब के किस्से हैं, तो आपको ये गम लगा हुआ था कि मेरी कौम यानी कुरैश पे भी अजाब आएंगे, चूंकि ये मेरी बात नहीं मान रहे। देखिए, माँ को पता होता है ना, बच्चा जिस डगर पे जा रहा है इसका नुकसान होगा, तो नबियों को भी पता होता है कि कौमों के जो लच्छन हैं ये इन पे अजाब लाएंगे। तो नबी दिन रात जब शिर्क होता और उनको बाप दादा के नाम पे गलत रसूमात करता देखते थे, तो जलते थे, क्या अजाब आया क्या आया। लेकिन उसमें एक आयत है, फस्तकीम कमा उमिरता, इस्तकामत, जो कह दिया गया करते जाइए, यानी ये उजड़ मुआशरा, ये जाहिल खानदान आपकी बात माने ना माने, आप इस्तकामत पे खड़े रहें। ये एहसास नबी को बूढ़ा कर रहा था। आप और मैं कभी अपने खानदान के लोगों के नाम लिख के देखें, करें ये काम, बल्कि फायदा होगा। करीब से शुरू कर लें, माँ बाप, फिर भाई बहन, फिर उनकी औलादें, फिर चचा, मामू, खाला, फुफो, ताया, उनकी औलादें, लिखते जाएं, लिस्ट बनाएं औरतों मर्दों की। फिर एंड पे बैठ के सोचें टोटल कितने हुए। हम इमेजिन करते हैं 100 पीपल, हमारे ख़ानदान के जिनको हम जानते हैं वो 100 लोग हैं, हालांकि मुझे यकीन है इससे ज़्यादा होंगे। एक बच्चे की शादी के लिए 500 लोगों की तो बन जाती है ऐसे ही कि 500 को बुलाना है। अब ज़रा आप उनकी दीनी हालत का गौर करें। करीबियों का पता होता है कौन नमाजी है कौन नहीं है, किन के अंदर शिर्क है किसके अंदर नहीं है, किन के रिस्क में कोई कमी बेशी है। अब जब 100 लोगों का गम आप लगा लेंगे तो सच बताएं आप बेफिक्रे रह सकते हैं। हम कहते हैं छोड़ो, जाते हैं खाना भी खिला देते हैं, ये आते हुए गिफ्ट भी दे देते हैं, हम कुछ दें तो खुशी से ले भी लेते हैं, बस हम बहुत अच्छी सिला रहमी कर रहे हैं। ये सिला रहमी नहीं है। अपने अपने खानदान की फिक्र लगा लें, तड़पें, रोएं, धोएं, और एक एक रिश्ते का नाम लेकर तहज्जुदों में दुआएं मांगें। क्या पता आपकी दुआएं उनको कहाँ ले आए। अल्लाह के नबी को ये गम लगा हुआ था। कुरान कहता है तौहा मानजलना अलैकल कुरआन लितशका, ए हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान हमने इसलिए नाजिल नहीं किया था कि आप गम और मुशक्कत में मुबतला रहे। बिल्कुल पहली दुआएं थे सूरह ताहा की, यानी आपको कुरान पढ़ पढ़ के गम होता था। आपकी हालत ये थी कि आप घंटों अपने कंबल की बुक्कल मारकर एक गमजदा इंसान की तरह बैठे रहा करते थे कि अब क्या होगा। इस हालत पर रहम फरमाते हुए अल्लाह ताला आपको यूं मुखातिब करते हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए हमारे गम में कंबली ओढ़ कर बैठने वाले, या अय्युहल मुद्दसिर, ए चादर ओढ़ने वाले। यानी कहने की बात है ना कि गम के मारे चादर ओढ़ के बैठे थे। कुरान मुखातिब करता है कि आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं। आपकी फिक्रमंदी और गम की हालत पर रहम फरमाते हुए अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं, फल अल्लाह का बाख़ नफ्सकला सारी मिल्लम यू मिन बिहाजल हदीस या सफ़ा। सूरत काहफ के पहले रुकू की आयत है, क्या हबीब यूं लगता है कि आप इस गम में घुल घुल कर जान दे देंगे, कि लोग इस पैगाम यानी दीन पर ईमान क्यों नहीं लाते। ये था आपका असल गम, इस गम को अपना लेना और आपके इस मिशन को अपनी जिंदगी का मिशन बना लेना ही आपकी असल इत्तबा है। सच बताएं कितने लोग इसको सुन्नत समझते हैं, इस पे बेशुमार दर्स दिए हैं। ये है वो सुन्नत जो मुस्तकिल सुन्नत थी। एक रबी अव्वल में मतरूक सुन्नतों के नाम पे एक सीरीज शुरू की थी कि वो सुन्नत है जिस पे आजकल लोग अमल नहीं करते। बड़ी अनयूजुअल सी बातें थी उसमें, थोड़े पे राजी हो जाना, मुआफ़ कर देना, बदला लेने की ताकत के बावजूद छोड़ देना, और उसमें ये बताई थी कि आपकी मुस्तकिल सुन्नत इंतजार थी, टू वॉर्न। लोगों को डराओ, लोगों की फिक्र करो, गम खाओ। मैं कहती हूँ ये गम दिल को लगा हो तो गिफ्ट लेने को भी नहीं दिल करता अपने रिश्तेदारों के लिए, वो गिफ्ट्स जो पहले ही उनके पास हो। आप कहते हैं इनको कोई हिदायत का तोहफा दे दो, इनके लिए कोई ऐसी चीज़ ले लो कि शायद इनका दिल खुल जाए। सच्ची बात है, आप इस वक्त, मैं भी, अपने अपने प्यारों की हालत पे गौर करें। मर जाएंगे तो आग में जाएंगे, और अगर आग में नहीं जाना तो दुनिया में धक्के खा के मरेंगे। 10 साल की बिस्तर पे वो रुलेंगे, हॉस्पिटल्स में उनकी जान जाएगी। ये नेक बंदे के साथ अल्लाह करता है, जिसको अल्लाह ने बचाना है आखिरत में। बेनमाजियों को देखिए, अक्सर बिस्तर पे जाके बेड रिडन होके मरते हैं, कमर की हड्डी टूट जाती है, नमाज ही नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अल्लाह ने पाक करना है। 10 10 साल से लोग कौमे में मौजूद हैं, आपके घरों में, खानदानों में आपके भी होंगे, अच्छे लोग हैं, इसलिए अल्लाह उनके साथ ये कह रहा है कि फरिश्तों इनके ऊपर कोई गुनाह ना रहे इससे पहले कि ये दुनिया से जाए, मैं इनको पाक करना चाहता हूँ। लोग तरस खाते हैं, हाय अब अल्लाह इनको उठा ले। क्यों उठा ले? यहाँ तो 10 लोग हैं इनकी टेक केयर वाले, कब्र में जाके अगर ये सफाई हुई तो क्या होगा? हम शुक्र करें उस गम बीमारी तकलीफ पे जो दुनिया में हमारे प्यारों पे आ जाए और 10 लोग उसको देख ले। अगर अल्लाह पकड़ने लग जाए कब्रों में जाकर तो क्या होगा? तो मोमिन को, सच्चे दिल के इंसान को, खरे को अल्लाह जाने से पहले पाक कर लेता है। औलाद का कोई गम लगा देगा, मुफलसी आ जाएगी, गुर्बत आ जाएगी, कोई इल्ज़ाम लग जाएगा, कोई वबा पड़ जाएगी, कोई जिस्म का हिस्सा काम करना छोड़ देगा, दूसरों के लिए अल्लाह इबरत बना देगा। ये सब पाक करने के तरीके हैं। तो क्या मेरा आपका अपनों के लिए दिल नहीं तड़पता? हम चाहते हैं हमारे भाई बहन इस तरह दुनिया से जाएं, हम चाहते हैं हमारे अजीज और अकारिब उस तरह के हालात से दुनिया में जाएं। हम क्यों नहीं उनकी इसलाह की फिक्र करते? इसलिए कि गम नहीं लगा, ये गम लगा ले। एक लेक्चर भी मुझे याद आ रहा है कि नबी का गम और हमारे गम कितने मुख्तलिफ हैं। आज हमें ये गम है बहन की बच्चे की शादी है पाकिस्तान जाना है, हमें ये गम है भाई के बेटे की भी शादी है उसके लिए कुछ गिफ्ट लेना है, ये गम बहुत है। हमें ये गम है फलां चचा है उनके घर में खाना नहीं है, बड़े गरीब हैं, फलां पुप्पो है उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा करा, तो ये गम बहुत है। बेनमाजी ये कोई गम नहीं, किसी के घर में रिस्क अच्छा नहीं आता कोई गम नहीं। हम कहते हैं अब इस पे कौन करे, सबको ही पता है, सबके घरों में कुरान है। अब मुझे पता है कि एक जान को जब 100 लोगों का गम लगेगा तो क्या वो बेफिक्रा रह सकता है? फिर घर रहने का वक्त है, सोने का, जागने का, आज खाने के साथ क्या बनेगा, चलो सैलड में ये बना लूं, फिर सरो साथ जरा मीठा भी बना ही लूं, चले आज साथ एक सूखी चीज, एक गीली चीज, फिर इन चीजों की फिक्र लगी रहती है। मैं लोगों को अक्सर कहती हूं अब दर्स रखें, सारों को बुला लें और खाने की फिक्र ना करें। बाद लोग कहते नहीं फिर ज्यादा लोग संभाले नहीं जाएंगे, थोड़ों को बुलाएं, करीब के बुलाएं। भाई अल्लाह के लिए करीब को ना बुलाएं, दूसरों को करीब करें। आपने 4 खाने बनाने थे, आप एक बना लें, आप कुछ भी ना बनाएं, कहते फिर लोग आते नहीं, आप एक बना लें लेकिन लोगों को बुलाएं। क्योंकि ये गम लगा हुआ है कि पेट का खाना तो रोज खाते हैं, रूह का खाना कितने खाते हैं? क्या मैं आप अपनों को सुनाने का इंतजाम नहीं कर सकते? आप देखिए कि इसके लिए जब हम कोशिश करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से इससे फायदा होता है। मैंने तो जितने लोगों को दीन से जुड़ते देखा है ना, कहीं भी जाके शुरू से आज तक, वो किसी न किसी दर्स में मिले। यानी इस दफा के पाकिस्तान के ट्रिप में मुझे एहसास हुआ पहली दफा कि बाहर रहने वालों के इतने रिश्तेदार पाकिस्तान में, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मैं आप लोगों के और जहां जहां स्टूडेंट्स उनके रिश्तेदारों को मिली हूं। पूरे ट्रिप में जहां जाती थी दर्स के बाद, आप कहीं जगह तो रिकॉर्डिंग में भी आया होगा, मेरे अपने प्यारों के नाम लेते थे जो हमारे हर वक्त साथ रहने वाले साथी, मैं उसकी बहन, मैं उसकी खाला, मैं फुलाऊं हूं, मैं फुलाऊं। और एक ऐसा दर्स था कि जिसको मैं कह सकती हूँ बेहतरीन दर्सों में से एक बेहतरीन दर्स था, और वहां सिर्फ एक साथी का नाम ले रहे थे लोग। भाई आपकी कौन है? कोई कहती खाला है, कोई कहती मन की बहन, कोई कहती मन की बहन की बहू। तो आप सब कैसे जुड़ गए? वो आपके किसी ग्रुप में व्हाट्सएप पे, वो वहां से वो ऑडियो हम सबको भेजती हैं, और पूरा खानदान। मैं सोची थी उनको आज पता भी नहीं, और मैं उनको कोई डेडिकेटेड स्टूडेंट नहीं समझती अपने हिसाब में, अंदर से जैसी भी होंगी करती हैं, लेकिन यह है कि मैंने इतना क्लोजली उनको नहीं देखा। बहुत अच्छी है मुझे पता है, लेकिन जैसे बैठना टेस्ट देने लेने से ज्यादा वैसे सुनने वालों में, और कोई उनके कमेंट्स और जो उनकी मैं कहती हूँ वारफ्तगियाँ थी, अल्लाह मुझे माफ़ करे जो उनके हालात देखे मैंने। तो एक नेकी कितनी नेकियों पर लग गई। चार चार छः छः आठ आठ घंटे के सफर से लोग सफर कर कर के आए थे दरसों में, कहाँ से जी के हम व्हाट्सएप पे सुन रहे थे तो हमने मिलना था, हमने आना था। चले अल्लाह आपको करे। तो ये दूसरों का गम लगाना दूसरों को हिदायत दिलवाता है, हम लिए दिए रहते हैं, हम कहते हैं अब कौन जिम्मेदारी ले, पहले ही बड़े काम है, फिर लोग तंग आ जाते हैं, कहते हैं ये मैं हर रोज़ मैसेज भेजती हूँ। मैं कहती इस वक्त ये जो व्हाट्सएप का एक आपके मेरे पास अल्लाह ने मीडियम दिया है, आपका मेरा फ़ोन तो कभी फारिग ही ना रहे, एक एक बंदे तक इस पैगाम को पहुँचाएं। और मैंने देखा है कि आज के दौर का वाकई एक बड़ा मुबल्लिग ये टेलीफोन है, इसी से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। मेरी आपकी कितने सुनते हैं, फोन तो सबके हाथों में है ना, आप सारे शहर को भी दावत देंगे तो वही आएंगे ना जिनके लिए मुमकिन है। तो फोन तो घर में लोग रात जाते आते 100 को आप भेजेंगे, मेरा ईमान है कि उसमें 10 भी सुन लेंगे ना, तो वो 10 आपके लिए आगे फिर एक और नेकी का जरिया बनेंगे। और मजे की बात है जिसको मिलता है वो कहता है मैं आगे अपने फोन वालों को भेज रहा हूं। मैं भी सोचती थी ये जंगल की आग की तरह फैल कैसे गई है दावत, उसकी वजह ही है कि आपने मुझे भेजा, मैंने अपने 100 को भेजा, उन 100 ने अपने 100 को भेजा, उसने अपने 100 को भेजा, और हर 100-100 में से 2-4 भी सुन लें तो कई 100 तो वही बन जाते हैं। तो ये गम लगाएं, इसमें कोई किसी को प्रमोट नहीं करते, आपको जिसका अच्छा लगता है आप उसका भेज दें, किसी का दिल तो खुले, हिदायत तो मिले, तड़प तो हो। आप देखें कि बीज डालकर किसान भूल जाता है कि मैंने कहाँ डाला था, पौधा उगता है तो पता चलता है यहाँ बीज डाला था। आपका मेरा काम है बीज डालते जाएं, बस खैर के ये जो कर सकते हैं वो करें, आप देखिएगा दूसरा काम भी आसान हो जाएगा। अल्लाह का इंतकाम है जब बंदा कोई नेकी कर सके और ना करे, लिखे ये जुमला, बंदा कोई नेकी कर सके और ना करे तो अल्लाह उन नेकियों की भी तौफीक छीन लेता है जो आप कर रहे होते हैं। लिख लें, ये नाकदरी की हद होती है। अल्लाह कहता चलो भाग जाओ, केक आउट, तुम कर सकते थे तुमने नहीं किया, अब जो तू करना चाहते हो मैं नहीं कराऊंगा। अल्लाह का मामला कोई आसान मामला नहीं है, अल्लाह ताला इतना भोला और सीधा नहीं है जितना हम उसको समझते हैं। वो हमारे दिल दिमाग अंदर बाहर ऐसे झांक लेता है, शीशे के कैबिन में बैठे हुए आप, छुपा सकते ही कोई नहीं, आप छुपा सकते ही कोई नहीं आप कोई चीज़।